राधा माधव जन कुंज बिया जय गोपी जन वना गो जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरी शोधनंदन जय ब्रज जन रंजन जय शोधनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना कीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना कीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्र बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी तस्मिन् डिवोटी ऑल ग्लोरी तस्मिन् डिवोटी ऑल ग्लोरी तस्मिन् डिवोटी ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आज का जो विषय है आप लोग तो जानते हैं, आज क्या है प्रवचन का विषय? कार्तिक महात्म्य। तो पिछले साल आप लोगों में से कौन कौन लोग थे जो मैं पिछले साल आया था और कार्तिक का महात्म्य सुनाया था मैंने? हाथ उठाए। एक एक नहीं, हाथ उठा करके हाथ नीचे कर लिया नहीं, निश्चित रूप से एक एक दो तीन चार पांच। अच्छा, तो बताइए सुनाइए वो कौन सी कथा मैंने सुनाई थी कार्तिक महात्म की? कौन सी कथा मैंने सुनाई थी? ये कथा मैंने सुनाई थी,
ये भी सुनाई थी और एक चुहिया वाली जो राजा।
अच्छा, मुझे जो याद है यहाँ पर जो मैंने सुनाई थी कथा वो धर्मदत्त ब्राह्मण की सुनाई थी जो कलहा नाम की राक्षसी को जिन्होंने शुद्ध किया था। हैं?
ये तो भी पहले सुना।
हाँ, ये और पहले कभी वो यहाँ सुनाई थी या कहीं और सुनाई थी? हाँ, पिछले साल जो मैंने सुनाई थी वो धर्मदत्त ब्राह्मण की कथा थी जो कि एक कलहा नाम की राक्षसी को उन्होंने शुद्ध किया था कार्तिक व्रत के प्रभाव से, है ना? तो बहुत कम लोग जानते हैं, तो उस कथा को मैं संक्षेप में सुना करके इसके आगे वाली कथा सुनाऊंगा जो राजा चोल की कथा है। कार्तिक महात्म्य में पांच कथाएं हैं पद्म पुराण में जो लिखी हैं। एक कथा सत्यभामा की है, उसका नाम क्या था सत्यभामा का पिछले जन्म का नाम? गुणवती। हाँ, गुणवती की कथा है। और दूसरी कथा धर्मदत्त की है। तीसरी कथा शंखासुर की है। और चौथी कथा राजा चोल की है। और पांचवी कथा धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण की है, है ना? तो ये कथा जो है मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ। तो इसमें ये बताया गया है कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था धर्मदत्त। तो इनका नियम था, कार्तिक के नियम का पालन करते थे। तो जन्म से लेकर के अभी तक ये कार्तिक के नियम का बड़ी कठोरता से पालन करते थे। तो उनके घर के पास में एक विष्णु मंदिर था। तो कार्तिक के दिनों में वे जो है रात्रि के अंतिम प्रहर में उठ करके विष्णु मंदिर में जाते थे आरती करने के लिए, वही मंगल आरती जो हम लोग करते हैं। तो अपने घर से वो जो है आरती की थाली सब सजा करके उसमें जो भी सामान होता है, तुलसी का जल होता है और फूल होते हैं और जो है वस्त्र है, जितना भी सामान है सजा करके जा रहे थे। तो वो समय आप लोग जानते हैं रात्रि का पिछला प्रहर का समय अंधेरा होता है, रास्ते में अंधेरा था। उन दिनों तो ये सब बिजली नहीं होती थी ना, रास्ते में अंधेरा ही होता था। तो अंधेरे रास्ते में उस ब्राह्मण को एक राक्षसी दिखाई दी सामने से आती हुई। तो बड़ी भयानक राक्षसी थी, जीभ लप लपाए हुए आ रही थी और बड़ी भूखी थी। तो इस ब्राह्मण ने जो है उस समय अपनी रक्षा के लिए जो नहीं करना चाहिए वो किया, क्योंकि कभी संकट काल में कुछ ऐसा भी काम करना पड़ता है जो ना किया जाए अपनी रक्षा के लिए, है ना? तो सब कुछ किया जा सकता है। तो अपनी रक्षा के लिए उस ब्राह्मण के हाथ में जो थाल था ना, पूजा की थाली, वही मारी फेंक करके उसको, है ना? तो क्या सोच के मारी? वो तो पूजा की थाली थी, क्या सोच के मारी? कोई उसके हाथ में जो था वही मारा फेंक करके, लेकिन उसमें जो तुलसी का जल था तो वो जो है उसको जब लगा तो उस जल से वो पवित्र हो गई राक्षसी। उसको पिछले जन्म की याद आ गई कि मेरे पिछले जन्म के कैसे बुरे कर्म थे जो मुझे राक्षसी की योनि प्राप्त हुई, और उसको आगे 3 योनियां और भी प्राप्त होने वाली हैं पाप कर्म के फल स्वरूप, है ना। तो वो जो है उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। अब सोचिए कितना बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना। तो ब्राह्मण बड़ा चकित हो गया कि ये तो मुझे खाने के लिए आई थी अभी, हाँ प्रणाम कर रही है, और वो जो है रो रो करके बोली कि आपने जो है मुझे इतना पवित्र कर दिया है कि मैं पिछले जन्म की वो सब घटनाओं को याद कर सकती हूँ कि जिनके कारण मुझे ये कष्ट प्राप्त हो रहा है, अब आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम कौन हो और तुम जो है पिछले जन्म में किस स्वभाव की थी, किसकी पत्नी थी। तो उसने फिर बताया कि मैं जो है एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी और मेरा नाम कल्हा था, और मैं अपने पति की सेवा नहीं करती थी, पति को अच्छा भोजन कभी नहीं खिलाया, और मैं जो है छिप करके अच्छा अच्छा भोजन बना करके खाती थी, और पति से हमेशा झगड़ा करती थी। और फिर जब पति ने विचार किया कि मैं दूसरा विवाह कर लूं, तो उनको बदनाम करने के लिए मैंने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। तो जब मेरा शरीर छूटा तो यम के दूत मुझे मारते मारते ले गए यमराज के पास, और यमराज के सामने मुझे खड़ा कर दिया, और चित्रगुप्त ने जो है मेरा खाता खोल करके बताया कि इसके जीवन में तो कुछ भी अच्छा कर्म नहीं है, क्योंकि इसने अपने पति को बदनाम करने के लिए आत्महत्या की है, इसलिए ये जो है प्रेत योनि में जाए और ऐसे स्थान में जहाँ पानी भी नहीं मिलता है, ऐसे स्थान में ये जो है मतलब प्रेत योनि में जाएगी। और चूँकि ये अपने पति के साथ झगड़ा करती थी तो इसको कौन सी योनि मिलेगी, एक तो चमगादड़ और बिल्ली सुकरी, सुकरी की योनि इसको प्राप्त होगी जो मल खाती है। और चूँकि ये अपने पति को ना खिला करके और चोरी चोरी खाती थी अच्छे अच्छे भोजन, तो ये चमगादड़ की योनि प्राप्त करे जो कि अपना मल खाती है। चमगादड़ का जो मल है उसके मुंह से ही निकलता है, तो एक प्रकार से अपना मल खाना ही हुआ, तो चमगादड़ की योनि प्राप्त करे। और जिस बर्तन में ये बनाती थी उसी में खाती थी, तो उसको बिल्ली की योनि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से उसने बताया कि मैं 500 साल से प्रेत की योनि में भूखी प्यासी भटक रही हूँ, 500 साल हो गए मुझे, और अभी अगली 3 योनि और भी मुझे प्राप्त होने वाली हैं, तो आप जो है मेरी अब रक्षा करिए, इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार करिए, और अगली जो 3 योनि और भी जो मेरे पाप कर्मों के कारण मिलने वाली हैं उनसे भी मेरी रक्षा कीजिए। तो धर्मरत ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो जो है अब क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, कि प्रेत की योनि में तो कोई जो है दान और तीर्थ यात्रा और यज्ञ इन सब में तो अधिकार है नहीं तेरा, लेकिन तेरा उद्धार तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये मेरी चिंता हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे जन्म से लेकर के अभी तक मैंने जो भी कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा फल तुझे दे रहा हूँ, और इस प्रकार से कह करके उसके ऊपर जल छिड़का। तो जैसे धर्मदत्त ब्राह्मण ने उसके ऊपर जल छिड़का तो वो जो है उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। अब ये प्रेत योनि से छूटने की बात तो बहुत दूर है, अगली योनियाँ जो उसको मिलने वाली हैं वो तो बहुत दूर है, उसको तो दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और वैकुंठ से विमान आ गया। आप सोचिए वैकुंठ से, हरिबोल, वैकुंठ से विमान आ गया है, और उसको जो है मतलब तेजस्वी मतलब रूप प्राप्त हो गया, जैसे अग्नि के समान उस तेजस्वी उसको रूप प्राप्त हो गया। और पुण्यशील और सुशील नाम के जो भगवान के पार्षद थे तो वे जो है उसको लेने के लिए आए, तो धर्मदत्त ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो जो है इतना जो व्रत किया तो मेरे लिए तो विमान आया नहीं, और इसको मैंने आधा फल दिया इसके लिए विमान आ गया, है ना। तो पुण्यशील और सुशील जो विष्णु पार्षद थे वे जान गए कि धर्मदत्त को बड़ा संशय हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप संशय मत करिए, आपका तो वैकुंठ में जाना बिल्कुल निश्चित है, है? और आपकी कृपा से जब ये जा रही है तो आप अपने लिए संदेह ना करिए, आपका तो निश्चित है, और आपकी जो दो पत्नियां हैं वो भी आपके साथ जाएंगी वैकुंठ में, है ना। और आपने जो है, उन्होंने बताया कि आपने जो स्नान किया, आप कार्तिक में जो स्नान करते थे और हरि का जागरण करते थे, उसके फल से इसके लिए विमान आया वैकुंठ से। और कार्तिक में आपने जो दीप दान किया उसके फल से इसको तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है, सौंदर्य और है ना तेज उसको प्राप्त हुआ है। और तुलसी का जो पूजन किया आपने कार्तिक में, इससे विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हो गई है। तो आप जो है अपने दो स्त्रियों के साथ में विष्णु वैकुंठ में जाएंगे, और कुछ समय के बाद जब वैकुंठ से आप इस भौतिक संसार में आएंगे तो आप सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा होंगे, आपका नाम दशरथ होगा, और आपकी जो दो पत्नियां हैं वो भी आपकी पत्नियां बनेंगी, और तीसरी पत्नी ये बनेंगी आपकी, क्योंकि आपने इसको अपना आधा पुण्य दिया है, तो तीसरी पत्नी ये बनेंगी आपकी, है ना। तो आप समझ गए तीसरी पत्नी कौन है दशरथ जी की, कैकेयी, ये कल्हा ही जो है कैकेयी, है ना। तो इस तरह से जो है जब भगवान के पार्षदों ने धर्मदत्त का संदेह दूर किया, तो अब सुनिए अब अगली कथा, तो इसके आगे ही मतलब ये बात चल रही है कि विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर के धर्मदत्त ने विस्मित होकर दंडवत प्रणाम करके ये वचन कहा। इत्थं तन्वचनं श्रुत्वा धर्मदत्तः स विस्मयः प्रणम्य दंडवत भूमौ वाक्यमे तन्ववाचः। धर्मदत्त बोले, सभी भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु का सभी मनुष्य यज्ञ दान व्रत तीर्थ द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं, उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने वाला और उनकी समीपता देने वाला क्या कोई व्रत है। किसने पूछा? धर्मदत्त ने पूछा। किससे पूछा? धर्मदत्त ने पूछा। किससे पूछा? विष्णु के पार्षदों से पूछा। समझिए कथा को समझिए। तो विष्णु के पार्षदों से पूछा, क्या पूछा? क्या पूछा? कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के कार्य हैं, यज्ञ हैं, दान हैं, व्रत हैं, तीर्थ हैं, अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, उनमें सबसे अधिक विष्णु को प्रसन्न करने वाला, उनकी समीपता प्रदान करने वाला क्या कोई व्रत है। अच्छा प्रश्न है ना? नहीं, अच्छा प्रश्न है। कितने प्रकार के है ना दान व्रत वगैरह होते हैं, तो विष्णु को सबसे जो अधिक प्रसन्न करने वाला शॉर्टकट है ना कोई व्रत है। धर्मदत्त पूछ रहे हैं। आराधयन्ति सर्वेपि विष्णुं भक्तादिनाशनम् यज्ञैर् दानैर् व्रतैस्तीर्थैः तपोभिश्च यथा विधि। तो विष्णु के दूत बोले, हे ब्राह्मण तुमने अच्छा प्रश्न किया। ऐसा प्रश्न करना चाहिए। तुमने अच्छा प्रश्न किया। कौन बोले? विष्णु दूत बोले। तुमने अच्छा प्रश्न किया। हाँ हे ब्राह्मण, इतिहास सहित जो हम वृत्तांत कह रहे हैं उसे तुम एकाग्रचित होकर सुनो। कैसे सुनना? एकाग्रचित होकर के सुनना। तो आपको भी सुनना है ना। कैसे सुनना है? एकाग्रचित होकर के, ऐसे नहीं सुनना है। एकाग्रचित होकर के सुनना है। साधु पृष्ठम तो या विप्र सुनस्व एकाग्र मानस से इतिहासम पुरावृत्तम कथ्यमानम मयानघ। कांचीपुरी में चूर नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। कहां पर? कांचीपुरी में। राजा का नाम क्या है? चूर चक्रवर्ती राजा हुए। इसी नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। हाँ, उनका पूरा जो राज्य क्षेत्र है वो भी चोल देश कहलाया। कांचीपुर्याम पुरा चोलस चक्रवर्ती नृपो भवन यश्याख्य एव ते देशार्ष चोला इति प्रथम गताम। उस राजा के पृथ्वी पर शासन के समय कोई मनुष्य दरिद्र दुखी या पापी या रोगी नहीं था। सोचिए ऐसा राजा, उसके राज्य में कोई मनुष्य ना तो दरिद्र है, ना दुखी है, ना पापी है, ना रोगी है। यस्मिन् छास्ति भूचक्रे दरिद्रो वापि दुःखितः पापे बुद्धे सर्गवापि नैव कश्चन भून्नरः। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के यज्ञ स्तंभों से ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट शोभित हो गए थे। कितना यज्ञ किया, तो यज्ञ के स्तंभ जहां जहां देखो वहीं, और ताम्रपर्णी नदी के तट पर वो राज्य करते थे। यस्याप्यनन्त यज्ञस्य ताम्रपर्ण्यास्तटावभौम सुवर्णयूपे शोभाढ्या वास्ताम चैत्ररथोपमौम। हे ब्राह्मण, एक समय वो राजा जहाँ विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं, उस अनंत शयन नामक स्थान को गया। सगदाचिन अगान राजा हिनन्ते शयनम द्विजय यत्राशो जगताम नाथो योग निद्राम पाश्रितः। तो वहाँ अनंत सेन नाम के भगवान हैं, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं वो जो वहाँ पर जो मंदिर है, श्री रंगम, रंगनाथ जी ना, जो बहुत बड़ी मूर्ति है ना रंगनाथ जी, है ना, तो वहीं पर तो है वो रंगनाथ जी का मंदिर अनंत सेन, उनको अनंत सेन भी कहते हैं भगवान को, है ना। तत्र से रमणम देवम संपूज्य विधिवन नृपः मणिमुक्ता फलैर दिव्य स्वर्ण पुष्प च शोभने। वहां उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों मोतियों और सोने के फूलों से पूजन किया। ये सामान्य फूल नहीं, सोने के फूलों से पूजन किया और दिव्य मणि और मोतियों से पूजन किया। सकदाच नगांद राजा हिनन्दे सेनम दुजय यत्राशो जगताम नाथो योग निद्राम पाश्रितः। फिर भूमि में दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। कौन बैठ गया? राजा चोल बैठ गया, है, दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब उसने भगवान के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। किसने देखा? राजा ने देखा। क्या देखा? एक ब्राह्मण आ रहा है भगवान के समीप। प्रणम्य दंडवत भूमा उपविष्टा स तत्र वै तावन ब्राह्मण मायांतम अपश्यन देव सन्निधौम। ये ब्राह्मण भगवान की पूजा के लिए हाथ में तुलसी और जल लिए था और अपनी पूरी कांचीपुरी का ही रहने वाला था। विष्णुदास उस ब्राह्मण का नाम था। देवार्जनार्थम पाणौ तो तुलस्योदक धारिणम सुपुरी वासिनम तत्र विष्णुदास वयम द्विजम। क्या नाम था ब्राह्मण का? विष्णुदास। उस ब्रह्म ऋषि ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराया, तुलसी की मंजरी और तुलसी पत्र से भगवान का पूजन किया। सतत्राभ्येत विप्रर्षि देवदेवम पूजयन विष्णु सूक्तेन संस्नप्य तुलसी मंजरी दले। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की अपनी रत्नों की पूजा को देख करके राजा ने क्रोधित होकर कहा, मतलब ढक गई पूजा। राजा ने रत्नों से पूजा की थी, भगवान की ने चढ़ाए थे, हैं, तो ढक गए। कैसे ढक गए? तुलसी पत्र, तुलसी की मंदिरी से वो ढक गए। तो राजा ने जो है क्रोधित होकर के कहा, किससे कहा? ब्राह्मण से कहा। तुलसी पूजया तस्य रत्न पूजाम पुराकृताम आच्छादिताम समालोक राजा क्रुद्धो ब्रवीन वचः। राजा चोल बोले, यह माणिक और सोने से कि हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी के दल से क्यों ढक दिया? ठीक बात नहीं?
नहीं,
नहीं है। तो राजा ने कहा, तुमने क्यों ढक दिया? माने के शरण है पूजात्र है सौभाग्याया कृता मया विष्णुदास कथम से यम आछन्ना तुलसी दले। तो विष्णु की भक्ति को नहीं जानने वाला ढोंगी है। किसने कहा? राजा चोल ने कहा। ये मैं जानता हूं तूने अति सौभाग्युक्त मेरी पूजा ढक दी। विष्णु भक्ति न जानासी वराकोसी मतिर मम यस्तुम यस्तुमा मति सौभाग्याम पूजाम आचाद्यत्य हो। उसने भी चोल राजा के गौरव को ना मानकर कहा। किसने? ब्राह्मण ने। वो भी डरा नहीं, ब्राह्मण थोड़ी डरते हैं, है ना। राजा के गौरव को ना मान करके कहा। इति तन्वचनम श्रुत्वा सक्रोधा साधु ज्योतम राज्ञो गौरव मुल्लंघे जगादे वचनम तदा। विष्णुदास बोले हे राजन तुम भक्ति को नहीं जानते। क्या नहीं जानते? भक्ति को नहीं जानते। राज लक्ष्मी से गर्वित हो रहे हो। तुमने कितना विष्णु व्रत किया है सो बताओ। राजन भक्ति न जानासी गर्वितोसि नृप श्रिया कियन् विष्णु व्रतम पूर्वम त्वया चीर्णम मदस्वतन। उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर राजा हंसकर विष्णुदास से गर्वयुक्त वचन बोला। राजा हंस करके बोला। किससे? ब्राह्मण से बोला। इत्थम वदसि तन ब्राह्मण वचा श्रुत्वा प्रहस्य नृपोत्तम विष्णुदास ददा गर्वान् वाचे वचनम द्विजम्। राजा बोला हे ब्राह्मण यदि तुम विष्णु भक्ति से अति गर्वित है यदि तुम विष्णु भक्ति से अति गर्वित है तो तुझ दरिद्री और निर्धन की भक्ति ही कितनी है। तुम दरिद्र और निर्धन है तो तेरे अंदर क्या भक्ति है। विष्णु भक्त्याति गर्विता भक्तिस्ते कियति विप्र दरिद्रस्याधनस्य च। विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ दान तूने नहीं किए। पैसा है नहीं तेरे पास तो क्या करेगा तू। और हे ब्राह्मण तूने कहीं मंदिर भी नहीं बनवाया विष्णु का। यज्ञदानादिकं नैव विष्णोस्तुष्टिकरं कृतं नापि देवालयं पूर्वं कृतं विप्रेतया क्वचिन्। तब तुझे ये भक्ति का घमंड क्यों है हे ब्राह्मण। इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने, जितने लोग बैठे हैं सब लोग सुना है मेरा वचन। ईदृश्यापिते गर्व ऐसे तिष्ठति भक्ति तहा तच्छिण्वन्तु वचो मेद्य सर्वेऽपि ते दुजोत्तमा। अब तुम सब देखो कि ब्राह्मण अथवा मैं पहले कौन विष्णु का दर्शन प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मणों तुम तब तुम सब हम दोनों की भक्ति को जानोगे। क्या हो गई? शर्त लग गई। क्या बोलते हैं? कंपटीशन, स्पर्धा। हाँ, कौन विष्णु का दर्शन पहले करेगा देखो। मैं ये साक्षात्कार महम विष्णुर ऐसे वाद्य गमिष्यति पश्यन्तु सर्वेऽपि ततो भक्तिं ज्ञास्यन्ति चावयो। ऐसा कहकर वो राजा अपने राजभवन को चला गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु का यज्ञ आरंभ कर दिया। समुद्गलम्। किस मुनि को अपना गुरु बनाया? मुद्गल। मुद्गल ऋषि को अपना गुरु बना करके क्या शुरू कर दिया? विष्णु यज्ञ शुरू कर दिया, जिसमें बहुत से ऋषि ऋषियों के समूह थे। बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और बहुत सी संपत्ति थी। इस व्रत को पहले गया क्षेत्र में उन्होंने किया था। ऐसा किया जिससे क्या हो, जल्दी से जल्दी विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। ऋषि संघ समाजुष्टम भवन्नम बहु दक्षिणम यद व्रतम चाकृतम पूर्वम गया क्षेत्रे समृद्धिमान। उधर विष्णुदास भी विष्णु को संतुष्ट करने वाले नियमों को करने लगा। उस समय वहां मंदिर में वही रहा वो कहीं नहीं गया। कौन? ब्राह्मण विष्णुदास। विष्णुदासोऽपि तत्रैव तस्थौ देवालये प्रति यथोक्त नियमान् कुर्वन् विष्णोस्तु स्तुतिकरान् सदा। कार्तिक व्रत और भली भांति तुलसी के वन का पालन और एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र से हरि का जप यह सबको विधिवत करने लगा। माघोर जयोर व्रतम सम्यंग तुलसी वन पालनम एकादश्याम हरिर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्यया। षोडश उपचार और गीत नृत्य आदि करके उस नित्य विष्णु की पूजा और व्रत को किया। उपचार है षोडश फिर गीत नृत्य आदि मंगल है नित्यम विष्णुस्तदा पूजा व्रतान्येतानि सुकरो। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का स्मरण किया। हर समय स्मरण करना, उसमें पैसे की क्या आवश्यकता है? विष्णु को प्रसन्न करने के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं। सोते जागते खाते हर समय विष्णु का स्मरण करता था और समान दृष्टि होकर सब प्राणियों में स्थित विष्णु भगवान को ही देखता था। नित्यम संस्मरणम विष्णुर गच्छन् भुञ्जन् सुपञ्चसन् सर्वभूतस्थितं विष्णुम् अपश्यन् समदर्शनः। उसने विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक के विशेष नियमों का पालन और उद्यापन किया। माघ कार्तिकेय और नित्यम विशेष नियमान अपि अकरोत् विष्णु तुष्ट्यर्थम् सोद्यापने विधिम् तथा। इस प्रकार श्रीपति भगवान की आराधना करने और भगवान में ही निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में राजा चोल और विष्णुदास का बहुत समय बीत गया। दोनों अपने कंपटीशन में कंपटीशन कर रहे हैं दोनों है? एवं समाराधय तो एवं समाराधय तो श्रीहापतिम तयो तो चोलेश्वर विष्णुदासयो कालो वितीयाय महान व्रतस्थयो तन्निष्ठ सर्वेन्द्रिय कर्मणोस्तदा। अब एक समय विष्णुदास संध्या उपासना और पूजा करने लगी, तब कोई अलक्षित पुरुष उनका तैयार भोजन चुरा ले गया। सुनने सब लोग ध्यान से, चोरी कर ली उसके भोजन की। कदाचन विष्णुदास होता है कृत्वा नित्य विधिम द्विजहा सूप कर्मा करो तावन अहरन को पिलक्षितः। भोजन को ना देख कर भी उसने सायंकाल की पूजा की और व्रत भंग के भय से उस ब्राह्मण ने फिर से भोजन नहीं बनाया। एक ही बार भोजन बनाएगा, अब समय भी नहीं उसके पास बनाने का। तम दृष्ट्वाप्य स्वपाकम पुनर्नैव करो तदा सायंकाल सायंकालार्चन सौ व्रतभंग भयाद्विजः। दूसरे दिन भोजन बना के विष्णु को भोग लगाने को था कि उसका भोजन फिर चोरी हो गया।
वो चोरी करते भगवान चोरी कर देते।
अभी जितना बताता हूँ तो सुनो, आगे की बात नहीं है ना। तो अगले दिन भी ऐसे ही हुआ। द्वितीय पुनः पाकम कृत्वा यावत् सविष्णवे उपहारार्पणम कर्तुम तावत् कोप्य हरत पुनः। हे राजन, ऐसे 7 दिन तक कोई उसका भोजन चुराता रहा। अब 7 दिन से उसको कुछ मिला नहीं खाने को। इसके बाद विस्मय से मन में ऐसा विचार करने लगा। एवं सप्तदिनम तस्य पाकम को प्यहरण्य पे तथा सविस्मय सोत है मनुष्य एवं विचार्य। अब मन में सोच रहा है किसको बताए, उसके साथ में कोई है नहीं, अकेला है। राजा के तो कितने सेवक हैं, वो तो अकेला है। मन में सोच रहा है आश्चर्य की बात है, रोज आकर मेरा भोजन कौन चुरा ले जाता है। ये क्षेत्र सन्यासी का स्थान है, अतः मैं तो छोड़ के जा नहीं सकता। मेरा नियम है क्षेत्र संन्यास का, अब मैं यहाँ से छोड़ के जा भी नहीं सकता हूँ। अहो नित्यम समभ्येत कहा पाकम हरते मम क्षेत्रम संन्यासिन स्थानम न त्याज्यम सर्वथा। यदि भोजन दूसरा भोजन बनाकर मैं भोजन करूँ तो सायंकाल का भोजन छोड़ना पड़ेगा। अब क्या करूँ। पुनः पाकम विधायात्र भुज्यते यदि चिन्मया सायंकालार्चनम चेतन पर इत्याज्यम कथम भवे। तो ये तो मैं छोड़ नहीं सकता। नियम तो छोड़ नहीं सकता। अब भोजन नहीं मिल रहा है ना, हाँ, और अगर भोजन बनाते ही मैं भोजन कर लूं तो ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि हरि को बिना अर्पण किए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर मैं भोजन बना के भोजन कर लूं तब तो भोजन मिल जाएगा। अब मैं जाता हूं भोग लगाने, तब तक भोजन गायब हो जाता है, अब कौन क्या करूंगा, तो बड़ी समस्या हो गई है। यदि पाकं विधायात्र भोक्तव्यं वे मया नतन अनिर्वेद्य हरे सर्वैर वैष्णवैर नैव भोज्यते। 7 दिन का भूखा मैं व्रत कर रहा हूं, अब मैं इस भोजन की रक्षा करूंगा, क्या करूंगा, अब रक्षा करूंगा मैं। उपोषितो हम सप्ताहम तिष्ठाम्यत्र व्रत स्थितः अद्य संरक्षणम सम्यंग पाकर्ष्यास्य करोमि हम। इस प्रकार वह भोजन बना करके वहीं छिप करके बैठ गया। कुछ देर बाद भोजन चुराने के लिए आए हुए एक चांडाल को उसने देखा। किसने देखा? विष्णुदास ने। किसको देखा? चांडाल। क्या कर रहा है? चोरी कर। उस चांडाल को पता नहीं था कि कोई देख रहा है उसको, तो आया। इति पाकं विधायासो तत्रैव अलक्षित स्थितः तावद् दर्श चांडालम् पाकान्न हरणोत्थितम्। भूख से दुर्बल दीन मुख वाले हड्डी और चमड़ी शेष उस चांडाल को देखकर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे मन में बड़ा दुखी हुआ। उसको गुस्सा नहीं आया, हमको तो गुस्सा आएगा कि दुष्ट मेरा भोजन चुरा रहा, 7 दिन से इसने खाया है और मैं नहीं खा पाया, ऐसा नहीं सोचा ब्राह्मण ने। उसकी हालत देख करके उसको बड़ा दुख हुआ। बड़ा दुख हुआ, दया के मारे बड़ा दुख हुआ। छुच्छामम दीन बदनम अस्थि चर्मा वशेषितम तमालो तमालो के दुजाग्रो भून कृपया खिन्न मान सहा। उसने भोजन ले जाने वाले को देख करके ठहरो कह करके रोका और कहा, तू अन्न को रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा। ऐसा कहते वो घी का बर्तन लेकर उसी पीछे दौड़ा। लेकिन चांडाल तो अपनी तरह सोचता था ना कि वो तो वो भाग रहा है, ये उसके पीछे घी देने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन वो तो अपनी तरह सोचता है ना, चोर चोर कैसे सोचेगा, अपनी तरह सोचता है, तो वो चांडाल भाग रहा है। विलोक्यान्न हरम विप्रन तिष्ठ तिष्ठेत्य धावत कथम स्नासी तन रूक्षम गतमे तन गृहाण भूम। ब्राह्मण को अपने ओर आते देख वो चांडाल भय के मारे वेग से भागा। वो अपनी तरह सोच रहा है, वो भाग रहा है और ये उसके पीछे भाग रहे घी देने के लिए, घी ले ले, और मूर्छित होकर गिर पड़ा। शक्ति थी नहीं उसके अंदर, तो क्या हुआ, मूर्छित होकर गिर गया। थम्रवंतम विप्राग्रम आयांतम सविलोक्य चा वेगाधावन तन्भीत्या मूर्छितश्चा पपातः। वो ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देखकर वस्त्र के अंचल से हवा करने लगा। कौन? ब्राह्मण। किसको? चांडाल को हवा करने लगा। देखो क्या आश्चर्य है। भीतम सम्मूर्छितम दृष्ट्वा चांडालम साधुजोत्तम वेगाद अभेत्य कृपया स्ववस्त्रांतर अभिजयन। इसके बाद उठे हुए उसी चांडाल को विष्णुदास ने देखा, क्या संघ चक्र गदाधारी साक्षात नारायण। कैसी लीला भगवान करते हैं। अथोथितम तमेवासो विष्णुदासो विलोकयन साक्षात नारायणम देवम संघ चक्र गदाधरम। पीत वस्त्र धारण किए, 4 भुजाएं, छाती में श्रीवत्र का चिन्ह, मुकुट धारण किए, अलसी के फूल के समान जिनका रंग है, कौस्तुभ मणि वक्षस्थल में है, ऐसे भगवान को प्रत्यक्ष देखा। पीताम्बरम चतुर्वाहम श्रीवत्सांकम किरीटिनम अत श्री पुष्प संकाशम कौस्तुभोरस्थलम विभुम। उनको देखकर वो ब्राह्मण भक्तिभाव से युक्त होकर स्तुति नमस्कार करने में असमर्थ हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा कर सकते हैं, मैं क्या इतना योग्य हो सकता हूँ। तो वो तैयारी नहीं था कि भगवान की स्तुति या नमस्कार कर पाए, तो वो तो इतने हर्ष में आश्चर्य में वो जो है मतलब बेहबल हो गया। तम दृष्ट्वा सातु कैर भावैर आमृतो दुजसत्तम स्तोतुम चापे नमस्कर तुम तदा नालम्ब भूव सहा। उस समय इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए। गंधर्व अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगे। कहां पर? आकाश में। अधसक्रादयो देवास तत्रैवाभ्याय विशदा गंधर्वाप्सरसस्यापि जगुश्चानन्नृतुर्मुदा। उस समय वो स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया आकाश में। देवता ऋषिगण गाने बजाने लगे। देवता लोग विमान में बैठे और ऋषि बिना विमान के आकाश में स्थित हो सकते हैं। सब गाने बजाने लगे। भगवान की स्तुति वो नहीं कर पा रहा कुछ भी। भगवान को नमस्कार स्तुति वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो देख रहा है कितने ऋषि मुनि और देवता जो है भगवान को नमस्कार स्तुति कर रहे हैं। विमान सत संकीर्णम देवर्षि गण संकुलम गीतवादित्र निर्घोषम तत्स्थानम अभवत तदा। तदनंतर विष्णु भगवान उस ब्राह्मण को छाती से लगाकर अपने समान रूप देकर के वैकुंठ धाम को ले गए। हरि वो भगवान जैसा रूप उस ब्राह्मण का भी हो गया। कैसे? चार भुजाएं संघ चक्र गदा पद्म धारण किए। लेकिन वे भगवान नहीं होते, भगवान के सेवक होते हैं, है ना। ततो विष्णु समालिंग स्वभक्तम सात्विक व्रतम सारूप्यमात्मनो दत्त्वा अनयन वैकुंठ मंदिरम। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु के समीप जाते हुए विष्णु दास को यज्ञ की दीक्षा लिए हुए चोर राजा ने देखा। अरे नहीं जा रहा है मुझसे पहले। वो यज्ञ में बैठे हुए हैं दीक्षा लेकर के, हाँ, और देखा आकाश में, अरे ये तो जा रहा है जिससे मैंने जो है क्या की थी कंपटीशन, जिसके साथ मेरा कंपटीशन था, वो तो जा रहा है, जीत गया। राजा ने देखा विमान वर संतम तम गच्छन्तम विष्णु सन्निधिम दीक्षितश्चोल नृपतिर् विष्णुदासम ददर्श सहा। वैकुंठ भवन की ओर जाते विष्णुदास को देखकर राजा चोल ने अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर कहा, अपने गुरु, आप मुझको कंपटीशन में जिताने वाले थे, क्या कर रहे हो आप? आप जो कुछ भी कह रहे हो वो सब तो मैं कर रहा हूँ जीतने के लिए, हैं? आप क्या कर रहे हो? बुला करके कहा, वैकुंठ भवनम यांतम विष्णुदासम मिलोक सहा सुगुरम मुद्गलम वेगात आहुये थम मचो ब्रवीन। चोर बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ दान किया वो ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ को जा रहा है। हरा दिया तुमने मुझको। दीक्षितेन मया सम्यक् क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे बहु हतमग्नो कृता विप्रा दानाद्ये पूर्ण मानसा। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया, दान आदि करके ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की। यदि स्पर्धया मया चेतन यज्ञ दान आदिकम कृतम विष्णु स्वरूप धृंग विप्रो याति वैकुंठ मंदिरम। परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर हरि ने उसे प्रकट होकर दर्शन दे दिया। देखो कितने लज्जा की बात है मेरे लिए। मेरे पास सब धन संपत्ति सब कुछ है, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उसने प्रसन्न कर लिया विष्णु को। दीक्षित ने माया सम्यक क्षेत्र इसमें वैष्णवे बहु हतमग्नो कृता विप्रा दाना दे पूर्ण मानसा। परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर हरि ने उसे प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। नैवाद्यापि समय विष्णु प्रसन्न हो जाए ते ध्रुवम विष्णुदास सबसे भक्त है साक्षात्कार अमृतो हरि। इससे ये मालूम होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु प्रसन्न नहीं होते, भक्ति से ही उनका दर्शन होता है, ये पता चला। तस्मात् दानस्य यज्ञस्य नैव विष्णु प्रसीदति भक्तिरेव परम तस्य निदानं दर्शने विभो। ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया। कोई पुत्र नहीं था राजा के, मतलब बचपन से ही कैसे ऐसी कार्यों में लगे थे, है ना, तो पुत्र ही नहीं था। भांजे को राजगद्दी पर बैठाया क्योंकि बचपन से यज्ञ की दीक्षा में रहे, इसलिए राजा के पुत्र नहीं हुआ। इत्युक्त्वा भागिनेयं स्वं अविश्यं विसिञ्चन् निपासने आबाल्यात् दीक्षितो यज्ञे हि पुत्रत्वम् अगाध्यतः। इसी कारण उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के अधिकारी होते हैं। तस्मान् अद्यापि तन्देशे सताराज्यान् से भागिनः सुश्रीया एव जायन्ते तन्कृतावधि वर्तिनः। तब राजा चोल यज्ञ के कुंड में आकर अग्नि के सामने खड़े होकर के विष्णु की प्रार्थना करने लगे। सुनने सब लोग, राजा चोल अब यज्ञ कुंड के सामने आ गए, खड़े होकर के विष्णु की प्रार्थना करने लगे। यज्ञवाटम ततो भेत वही निकुंडाग्रता स्थित त्रिचैर व्याज हाराशु विष्णु बोधयन तदा। और कहा, हे विष्णु, मन वाणी और शरीर से मुझे स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। मन वाणी शरीर से मुझको अपनी स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। मुझे पता चला कि भक्ति से आप प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहकर वो राजा सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद गया। क्या किया? अग्निकुंड में कूद गया राजा भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करते हुए। विष्णु भक्त मिस्थराम देहि मनोवाक काय कर्म भी इत्युक्त्वा सोपतन बहनो सर्वेषाम एव पश्यताम। तब मुद्गल मुनि ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। क्यों? क्योंकि हमने जो है मतलब राजा की कोई सहायता नहीं करी, है, इसलिए क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ दी। तब से आज तक उस गोत्र वाले शिखाहीन होते आ रहे हैं, मुद्गल गोत्र के ब्राह्मण शिखाहीन होते हैं तब से। मुद्गलस्तु तथा क्रोधान शिखाम मत माट सुखम ततस्तुद्यापि तन गोत्रे मुद्गलाभिशिखा भवन। उस समय भक्त वत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हो गए। हरिवो भक्त वत्सल भगवान कहां से प्रकट हो गए? जिस अग्नि में वो कूदा था उसी अग्नि में भगवान प्रकट हो गए और राजा चोल को छाती से लगा करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया। तो उसको भी हारना नहीं था, हारने वाला नहीं था वो राजा। तावदा विरभूत विष्णु कुंडाग्नो अभत्य वत्सलः तमालिंग विमानाग्र्यम समारोहयत अच्युतः। उसे हृदय से लगाकर नारायण ने अपना स्वरूप दे दिया। जैसे विष्णुदास को बनाया अपने जैसा रूप, उसको भी दिया अपना स्वरूप, है, और देवताओं के साथ देवेश भगवान वैकुंठ को चले गए। तमालिंग्यात्म सारूप्यम दत्वा वैकुंठ मंदिरम तेनैव सह देवेशो जगामे त्रिदशैर्वृतः। तो भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील नामक अपना द्वारपाल बनाया और राजा चोल को बनाया सुशील नाम का अपना द्वारपाल। और वे लोग बोल रहे हैं ये जो द्वारपाल जो सुना रहे हैं कथा वही बता रहे हैं। किसको? धर्मदत्त ब्राह्मण को। धर्मदत्त ब्राह्मण को ये घटना पहले सुनाई फिर बताया कि हम लोग वही हैं, हम लोग वही हैं, हैं पुण्यशील और सुशील। भगवान के जो है दो दो द्वारपाल है ना, अलग अलग द्वारों के, है ना, तो एक द्वार के जो है ये द्वार पालने पुण्यशील सुशील किसी द्वार में जय विजय होते हैं, जोड़ी है ना ऐसे द्वारपालों की, किसी द्वार में नंद सुनंद रहते हैं, है ना। ध्रुव महाराज को लेने के लिए आए थे विमान लेकर के, तो नंद सुनंद ये जो है दो द्वारपाल आए थे, और इनको जो है कल्हा को लेने के लिए आए इस राक्षसी को, तो ये पुण्यशील सुशील नाम के द्वारपाल हैं, और यही बता रहे हैं विष्णुदास की इस प्रश्न पर कि कौन सा सबसे श्रेष्ठ व्रत है विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। यो विष्णुदास सतो पुण्यशील यशो लभो यस्सा सुशील नामा एताव भवतन समरूप भाजो द्वास्थो कृतो तेन रमा प्रियेण। तो इस तरह से जो है हमने बहुत सुंदर कथा सुनी है, कार्तिक के महात्म्य की बहुत सुंदर कथा है ये, है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कुछ है प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ, ऐसा है कि कार्तिक का जो महीना है तो पवित्र है, या अंतिम पांच दिन ज्यादा पवित्र होते हैं ना। तो वैसे तो भीष्म पंचक के व्रत की विधि बहुत कठिन है, और भीष्म जी को जब भगवान ने ये विधि बतलाई थी तो फिर उन्होंने ये भी कहा था कि आप इस विधि को करिए, तो इस विधि के द्वारा मैं आपके निकट रहूँगा, मुझे मतलब बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो ये जो विधि है हम बता सकते हैं किसी को, तो इसको सुनाया जा सकता है और सुनाया जा सकता है, इसमें भी फल है सुनाने और सुनने में, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग करते नहीं हैं। इस विधि में ये बताया गया है कि पांचों दिन ना कुछ खाना ना कुछ पीना ना सोना, है ना। पहले दिन की समाप्ति में जो है गाय का जो है पंचगव्य में एक चीज है, वो मतलब पहले दिन थोड़ा सा गोबर खाना है, दूसरे दिन थोड़ा सा गोमूत्र लेना है, तीसरे दिन गो दूध लेना है, चौथे दिन गो दही, पांचवें दिन गो घृत, ऐसे मतलब क्रम जो भी हो पंचगव्य में एक एक जो है मतलब लेना है, आप समझे ना। और बाकी कुछ ना खाना ना कुछ पीना ना सोना, है ना। तो ये विधि है, है ना। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा सुझाव यही है कि कार्तिक में आपने जितना किया है और कुछ बढ़ा दो, पांच दिन और मतलब करो, ठीक है ना। तो यही कर सकते हैं आप कि इन पांच दिनों में आप जो है कुछ और विशेष जो है अपनी कुछ ज़्यादा नाम जप कर सकते हैं, और श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर सकते हैं, भक्तों का संग है, श्रवण कीर्तन है, ये सब कार्य करिए, ठीक है ना। और अगर दिन रात कर रहे हैं भक्ति तो फिर तो कुछ अंतर ही नहीं पड़ता है, चाहे कार्तिक का व्रत हो, कार्तिक का महीना हो, चाहे कोई महीना हो, दिन रात भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद ने तो यही दिया नियम, दिन रात अगर भक्ति करते 24 घंटे लगे हैं भक्ति में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। और कोई चर्चा या प्रश्न? अच्छा, आपका कुछ कहना है? अच्छा, ये सुनाएंगे कुछ घटना यहाँ की संबंधित माइक। हाँ, अच्छा दूसरा माइक है।